अच्छा, आपने अभी जो बात की बेस सोचे समझे नाजरा पढ़ लें, एक ये भी तसव्वुर है कि रमजानुल मुबारक का महीना आया तो लाजमी कुरान को ख़त्म करना है और बेस सोचे समझे ही हमें नाजरा पढ़ना है, बल्कि बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं जो एक ही एक रमज़ान में कई कई कुरान मजीद का वो ख़त्म कर देते हैं नाजरा पढ़ते हुए, जबकि वो समझते कुछ भी नहीं है, बस उन्हें विर्द करना होता है, कुरान पढ़ना होता है, ख़त्म करना होता है। ये भी रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल गलत रवैया है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और उस किताब ने अपने नजूल का मकसद खुद बयान कर दिया। कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं कि किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अल्बाब। ये मुबारक किताब, ये बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि इसकी आयतों पर गौर किया जाए और अकल वाले इससे नसीहत हासिल करें। ये कुरान का मकसद है। अगर आपने इस मकसद को मलहूज रखे बगैर कुरान को पढ़ा तो आपने कुरान के साथ बेइतनाई का रवैया अख्तियार किया। मुझे तो कभी कभी अंदेशा महसूस होता है कि वो लोग के जो जानते बूझते इस तरह का मामला करते हैं कहीं वो खुदा की गिरफ्त में ना आ जाए। इसलिए कि आप खुदा की किताब को बेसोचे समझे कैसे पढ़ सकते हैं? आपको खुदा की किताब को समझना है, उसका फहम हासिल करना है, उसके अंदर बसीरत पैदा करनी है। ये चीज़ जब मुसलमानों में आप पैदा करेंगे तो फिर कुरान से उनका सच्चा ताल्लुक होगा तो दीन भी अपनी सही जगह पर आ जाएगा।
अच्छा, लेकिन जावेद साहब, एक रिवायत का हवाला आमतौर पर इस आपके आर्ग्यूमेंट पर इस तरह का हवाला दिया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो अलिफ पर तुम्हें 10 नेकियां और लाम पर 10 नेकियां और मीम पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो गोया कुरान मजीद को अगर मैं फातिहा से नास तक पढ़ लूँ तो मुझे इतनी हजारों लाखों नेकियां तो मिलेंगी, तो वो नेकियां मतलब ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों नेकियां
मिलेंगी। पहली चीज़ ये है कि रवायत कोई सही रवायत नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप मुझे पानी का एक गिलास देंगे तो हर कदम पर आपको मैं 1 रुपया दूंगा और आप एक कदम चल के खड़े हो जाए और मेरे पास ना पानी लाए तो दे दूंगा मैं आपको। आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो आप जब आपने कुरान के सही फहम के साथ पढ़ा, उसके मकसद को सामने रख के पढ़ा, तो फिर उसके अल्फाज पर आपको नेकी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुरान मजीद का मकसद ही पूरा नहीं किया तो आप नेकी की तवक्को कैसे कर सकते हैं और अजर व सवाब की तवक्को कैसे कर सकते हैं?
अच्छा, रमजानुल मुबारक में बहुत सारी रसूमात भी हमारे यहाँ एक राइज हो गई हैं, खास करके अगर एक रस्म का हवाला मैं दूँ, बच्चों की हम रोज़ा कुशाई करते हैं। बाज़ औक़ात तो इतने छोटे बच्चे होते हैं जिनको समझ ही नहीं होती, उनको ज़बरदस्ती जो है वो रोका जाता है कि वो पानी ना पी लें, वो ना सिर्फ इस बात से कि इतनी छोटी उम्र में उसने रोज़ा रख लिया और उसे हार पहनाए गए और उसे तस्वीरें खिंचवाई गई, ये रवैया किस तरह का है?
देखिए, हार पहनाना, तस्वीरें खींचना, ये तो मैं कोई इसको पसंदीदा चीज़ नहीं समझता। लेकिन मज़हब बहरहाल जब भी कभी किसी सोसाइटी में आएगा तो वालदैन चाहेंगे कि उसकी तरबियत भी अपने बच्चों को दें। इस वजह से रोज़ा रखवाना, छोटे बच्चे को रोज़ा रखवाना, मुनासिब उम्र को पहुंच गया तो उसमें ये एहसास पैदा करना है अगर रोज़े रखने हैं, इसके लिए अगर वालदैन ये अहतमाम करते हैं तो ये कोई बुराई की चीज़ नहीं।
ठीक,
बल्कि इस तरह की चीज़ें तहजीबी रवायत बन जाती हैं और तहजीबी रवायत भी इंसान की शख्सियत की तश्कील में बड़ा किरदार अदा करती है। ताहम उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए कि जो उसको एक ऐसी तकरीब या ऐसी रस्म बना के रख दें कि रोज़े की असल रूह बच्चे पर पहले दिन ही से मुंतकिल होना बंद हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। यानी रोज़े ही को सही रूह के साथ उस तक पहुंचना चाहिए।
लेकिन आप नहीं समझते गांधी साहब कि अगर हम ऐसे बच्चे को जो अभी बहुत छोटा है उससे अगर हम रोज़ा तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीयत अच्छी है हमारी, लेकिन जब हम उसे रखवाते हैं तो उसके दिल में रोज़े के खिलाफ एक नफरत पैदा होती है क्योंकि उसे खाने से रोक रहे हैं, पीने से रोक रहे हैं।
रखवाना भी नहीं चाहिए, मुनासिब उम्र में रखवाना चाहिए। यानी जब आप महसूस करें कि अब वो वक्त करीब आ रहा है कि बच्चे को रोज़े रखने हैं तो उसको उसका आदी बनाने के लिए, जैसे आप नमाज है तो ज़ाहिर नमाज फ़र्ज तो आप पर उस वक्त होती है कि जब आप बालिग हो जाते हैं, लेकिन बलूग से पहले हुजूर ने तलकीन की कि आप बच्चे को नमाज की तरफ तवज्जो दिलाएं। इससे मकसूद ये होता है कि एक चीज़ आपकी आदत बन जाए, आपको उसकी तरफ मेलान हासिल हो जाए। तो रोज़े में भी यही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 साल के बच्चे को रोज़ा रखवाना शुरू कर दें। यानी मुनासिब उम्र में जब बच्चे को कुछ रोज़े का शऊर हो गया, उसे कुछ पता चल गया कि रोज़ा क्या होता है, लेकिन अभी बलूग की उम्र नहीं हुई, अभी उस पर फ़र्ज नहीं हुआ रोज़ा, तो उससे पहले आप रोज़ा उसे रखवा दें।
अच्छा, एक और रिवायत और एक और रिवाज हमारे अंदर है, इफ्तार पार्टियों का एक सिलसिला होता है, दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं इफ्तार पार्टी, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर भी मुख्तलिफ सियासतदान इफ्तार पार्टियां करते हैं, मकासिद कुछ और होते हैं, अपनी डील कुछ करनी होती है, कोई बिजनेस मीटिंग करनी होती है, लेकिन इफ्तार पार्टी उसका जरिया होता है। इस तरह की इफ्तार पार्टीज रखना ये ठीक है? इसमें कोई कबाहत तो नहीं है?
जो चीज़ जिस मकसद के लिए की जा रही है वो मकसद हासिल हो जाता है। एक तो इफ्तार का वो उसूल है जो हुजूर ने कायम फरमाया कि आप ये देखें कि क्या कोई ऐसा आदमी है कि जिसके पास रोज़ा इफ्तार करने के लिए रोटी भी नहीं, पानी भी नहीं।
उस तरह तो इफ्तार पार्टी नहीं होती ना हमारे यहाँ,
उस तरह तो नहीं होती,
नहीं होती।
यानी इफ्तार पार्टी एक और चीज़ है और किसी को इफ्तार कराना
वो दूसरी चीज़,
नेकी और बहुत खैर का काम।
बिल्कुल,
किसी आदमी को आपने रोजे में शरीक कर लिया, आपने उसे अपने दस्तरखान पर बुला लिया, اس میں خاص طور پر غریب غربا اگر بلائے جاتے ہیں تو کیا ہی کہنے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں تو یہ بڑی ہی اجر و ثواب کی چیز ہے. تو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ قدروں کو اگر آپ پیدا کرتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ایک بڑی قدر ہے کہ ایک آدمی کی عبادت میں آپ نے سہولت اس کے لیے پیدا کر دی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک رسم اور ایک تقریب ہے, آپ اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ جس مقصد کے لیے
پسندیدہ بھی نہیں کہہ سکتے,
جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو کام خالص اس کے لیے ہوگا اس کا وہ اجر عطا فرمائے گا, اور جو کام آپ دنیا کے لیے کریں گے دنیا میں اس کا اجر پا لیں گے. تو افطار پارٹیاں جس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں وہ مقصد لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے.